ओम शांति। आज के सत्र में मंच पर आसीन हमारे महानुभाव में उसको अपना स्थान देने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ कविता बेन हैं, जो कि भरतपुर से यहाँ पधारी हुई हैं, धार्मिक प्रभाग की एग्जीक्यूटिव मेंबर है। फिर माननीय अतिथि के रूप में साध्वी सुलभा भारती फरुखाबाद से आए हुए हैं, वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दूसरे हमारे अतिथि है संत शिरोमणि रोहित दास जी महाराज, खाटू श्याम मंदिर भरतपुर से प्लीज सभा में उपस्थित है तो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आगे हमारे माननीय अतिथि है डॉक्टर अखिलेश्वर नाथ खरकटे पीठाधीश्वर संत लहरी बाबा आश्रम गोंदिया, आप भी सामने आएंगे हमारे गोविंद जी महाराज। फिर है आगे महामंडलेश्वर साध्वी श्री श्री 108 रेखा माका जी महाराज नई दिल्ली से, तो आप सामने आएंगे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राजयोगिनी सोमप्रभा बहन सब जोन इंचार्ज सोलापुर और धार्मिक प्रभाग की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, आप भी स्थान ग्रहण करेंगे स्टेज पर अपना। आगे का कार्यक्रम जैसे हमारी राजेश्वरी बहन ने बताया उस प्रकार पहले शंख नाद होगा, और जैसे हमारे प्राचीन काल में शंख नाद के बाद आरंभ होता है कोई भी शुभ कार्य, वो हम आज का सत्र शुरू करेंगे शंख नाद के साथ। का सम्मान करेंगे अपने विद्यालय की तरफ से। आज स्वामी जी का मौन है। कहीं मैंने पढ़ा संत मौन में रहते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं, महामूर्ख हिंसा करते हैं, पर हमारे सामने तो बहुत माननीय पूजनीय वंदनीय संत महंत महामंडलेश्वर बैठे हैं, और आज प्रैक्टिकल में आपने मौन धारण किया है, वो बहुत बहुत बड़ा व्रत है, स्वामी जी का सम्मान करेंगे। और फिर 3 मिनट एकाग्र होकर के स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे और आज का सत्र फिर शुरू करेंगे।
राजयोगी राजयोगी
सामने मंचा सेना सिन्यारा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बहने और संत गण उसका विद्यालय की तरफ से धार्मिक प्रभाग की तरफ से बेज और गुरुदस्ते के द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहने सम्मान करेगी। ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ तिलक बेज और गुरुदस्ते के द्वारा मंच पर उपस्थित सर्व महानुभावों का सम्मान करें, स्वागत करें। कहा जाता है टाइम इज मनी, आप सभी ने सुना होगा। हम जब कभी भी किसी को मनी देते हैं या लेते हैं तो बहुत करके देने में हम यही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा कम करो देने में, तो ये गिनती करके भी देते हैं। हम कभी भूल से भी ज्यादा नहीं देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, कहना है कि आज का सत्र वैसे भी थोड़ा लेट शुरू हुआ है, तो जो भी स्पीकर है अपने शुभ उद्बोधन हमारे सामने रखेंगे, तो शुरू से लेकर के अगर टाइम पर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो समय पर पूरा भी कर सकेंगे और सभी को इक्वल टाइम अपना महावाक्य कहो, उद्बोधन कहो, शुभेच्छा कहो के लिए मिलेंगे। तो ये हर एक वक्त अपना ध्यान जरूर रखेंगे। तो सबसे पहले विषय तो आप लोगों को बता दिया है, विश्व शांति में मनुष्य आत्माओं का कर्तव्य योगदान। तो हमारा मुख्य वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सीनियर टीचर कविता बेन है। आगरा सब जोन का संचालन वो कर रही है, 30 के करीब उपसेवा केंद्र, सेवा केंद्र, कितनी पाठशालाएं, बहुत सुचारू रूप से उसका संचालन कर रही है। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य आज के सब्जेक्ट पर हमारे सामने रखेंगे। ब्रह्मा कुमारी कविता बेन।
ओम शांति, सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, भारत के रत्न के रूप में संत शिरोमणि धार्मिक प्रभाग की हमारी राष्ट्रीय संयोजिका आदरणीय राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी और सभा में विराजमान पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम सभी यहाँ एकत्रित होकर विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए चिंतित हैं, चिंतनशील हैं और यहाँ एकत्रित होकर अपने आत्मबल मनोबल को इकट्ठा करके हम ये शक्ति अपने अंदर भर रहे हैं ताकि हम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ये आत्मबल, ये आत्म शांति, विश्व शांति की स्थापना में अपना धर्म प्रेमी होने के नाते अहम भूमिका अदा कर सकें। मैं आपके समक्ष वर्तमान विश्व की परिदृश्य को खींचना चाहूंगी कि आज हम धर्म प्रेमियों को पूरे विश्व में व्यक्तिगत शांति से लेकर विश्व में शांति स्थापना के लिए किन किन प्रयासों से गुजरना होगा। विश्व में शांति स्थापना के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों पर विचारण से पूर्व विश्व में अशांति के वर्तमान परिदृश्य पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। विश्व में शांति की स्थापना वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है। विनाशकारी हथियार तथा अणु एवं हाइड्रोजन बम्स का बड़े पैमाने पर निर्माण एवं संग्रह हो रहा है। विभिन्न देशों के मध्य युद्ध मानव विनाश का रिहर्सल है, यथा रूस और यूक्रेन, इजराइल एवं फिलिस्तीन, विश्व की शक्तियां रूस, अमेरिका, चीन तथा यूरोपियन देशों के मध्य परस्पर विवाद तनाव निरंतर चल रहा है। संक्षेप में, विश्व में सभी जगह मतभेद एवं अशांति का वातावरण है। कई देशों के अंतर्गत राष्ट्र धर्म एवं जाति के आधार पर हिंसा एवं गृह युद्ध का वातावरण है। विश्व में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जो भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कोई स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सका, विश्व शांति की स्थापना की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा उसका स्थायी हल प्राप्त करने के लिए शांति नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है। धार्मिक लोग विश्व शांति की स्थापना के लिए शांति यज्ञ आयोजित करते रहते हैं। समय समय पर विश्व शांति कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस हेतु समय समय पर शिखर सम्मेलन करते आ रहे हैं तथा विभिन्न देशों में रक्षा बजट तथा अस्त्र शस्त्र एवं अणु शस्त्रों का संग्रह बढ़ता जा रहा है तथा विश्व अणु युद्ध के कगार पर है। वास्तविकता यह है कि कोई भी बुराई एवं समस्या का जब तक समाप्त नहीं होती, जब तक उसकी जड़ें समाप्त नहीं हो जाती, अर्थात वे समूल नष्ट नहीं होती। अब तक हुए प्रयास विश्व शांति के वृक्ष की डाली को स्पर्श करने के मात्र हैं। विश्व में अशांति की जड़ें नष्ट होने के बजाय और ही बढ़ती जा रही हैं। ज्यों ज्यों दवाई की जा रही है, त्यों त्यों मर्ज अशांति का चहु और हर तरफ से हर प्रकार का बढ़ता जा रहा है। अतः हमें विश्व में अशांति की जड़ों को जड़ों में जाना होगा और उन जड़ों में जाने के लिए हम पाते हैं कि आज आर्थिक दृष्टिकोण का मतभेद यथा पूंजीवाद और साम्यवाद, विश्व के देशों के राजनीतिक मतभेद, विश्व देशों में धार्मिक मतभेद, जाति आधारित मतभेद, भाषा आधारित मतभेद, रंग भेद, विज्ञान और धर्म के मध्य मतभेद, प्राकृतिक आपदाएं, ये हमारे व्यक्तिगत और विश्वव्यापी अशांति को बढ़ाने के कुछ एक कारण हैं। विश्व में अशांति का मूल कारण है, हम विचार करते हैं तो इस पर पहुंचते हैं कि अशांति का मूल कारण मनुष्य के मन की अशांति है। अशांत मन ही अशांति उत्पन्न करता है। इसलिए ये कहावत प्रसिद्ध है, युद्ध मनुष्यों के मनों में जन्म लेते हैं। वार्स आर बोर्न इन द माइंड ऑफ मैन। अतः विश्व में शांति की स्थापना के लिए पहले मनुष्य के मन को शांत बनाना होगा। मनुष्य विश्व की प्रथम इकाई है। इस बिंदु पर हम गहनता से विचार करें तो पाएंगे कि मनुष्य के मन को अशांत बनाने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस और अलबेलापन है। इनके वशीभूत मनुष्य स्वयं भी अशांत होता है तथा दूसरों को भी अशांत करता है। इन सबके मूल में है देह अभिमान, जो श्री रामचरितमानस में कहा गया है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान माना बॉडी कॉन्शियस। विश्व में अशांति के मुख्य पहलों का उत्प्रेरक मनुष्य का देह अभिमान तथा मानव मन की अशांति एवं असुरक्षा की भावना है। विश्व में शांति का आध्यात्मिक पहलू स्वधर्म, पवित्रता और शांति है। सर्व शास्त्रमय श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता के सातवें श्लोक में भगवान उवाच कहा गया है, जब जब मनुष्य सृष्टि पर धर्म की ग्लानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को धारण करता हूँ, अर्थात साकार रूप में साकार प्रकट होता हूँ। इसी चौथे अध्याय के आठवें श्लोक में यह भी स्पष्ट किया गया है, परमात्मा धर्म की स्थापना अर्थ ही अवतरित होते हैं। धर्म का अर्थ है धार्यति इति धर्म। सद्गुण अवगुण धारण करने वाली मनुष्य आत्मा है तथा पृथ्वी पर धर्म की ग्लानी होती है, तब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। निराकार परमपिता परमात्मा का सन 1937 में भारत भूमि पर दिव्य अवतरण हो चुका है। परमात्मा सन 1937 से सन 1969 तक अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सन 1969 तक प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होकर सूक्ष्म वतनवासी बनने पर सन 2011 तक अपने अव्यक्त महावाक्यों द्वारा अपने गोद लिए गए ब्रह्मावत्सों का ज्ञान योग धारणा सेवा की शिक्षा देकर आत्मा के स्वधर्म पवित्र एवं शांति की धारणा के लिए प्रेरित करते रहे हैं, ताकि विश्व में शांति अर्थात भारत भूमि पर स्वर्ग की स्थापना हो सके। इस संदर्भ में सन 1985 के आसपास निराकार परमात्मा शिव का सर्व आत्माओं प्रति दिया गया शांति के प्रति ईश्वरीय संदेश इस प्रकार से है। आज चारों ओर के अशांति के वातावरण को देख शांति के सागर विश्व पिता परमात्मा का अपने शांति प्रिय बच्चों के प्रति संदेश है कि कब अंतर्मुखी बनकर इस पर सोचा है कि जब सब मानव की इच्छा व्यक्तिगत जीवन में वह सर्व द्वारा शांति की ही है, फिर भी इच्छा और प्रैक्टिकल कर्म में इतना अंतर क्यों? जब जानते हैं सबकी इच्छा तो शांति की है, पीस की है, किंतु प्रैक्टिकल कर्म में पीस के बजाय पीसेज टुकड़े होते जा रहे हैं इस कारण अशांति बढ़ती जा रही है। अब नॉलेजफुल बाप अर्थात निराकार परम सत्ता परम शक्ति परमात्मा सुना रहे हैं कि इन सब पीसेज होने का मुख्य कारण पहले मानव के मन के दिल के अनेक टुकड़े होना है, क्योंकि हरेक के दिल को आज विनाशी इच्छा अभिमान के हथियारों ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, और दिल के टुकड़ों के कारण ही देश में धर्म में भाषा में टुकड़े हुए हैं। अब इसको जोड़ने का साधन है, सॉल्यूशन है अपने आप को एक प्यार के सागर बाप के बच्चे आत्मा भाई भाई जानना, उससे ही आत्मिक लव और सहज अनुभव होगा। इसी को यथार्थ ब्रदरहुड कहा जाता है। याद रहे लव ही पीसफुल बनाने का फाउंडेशन है, जहां प्यार है वहां शांति स्वतः है ही। इसलिए आत्मिक लव के स्रोत परमात्मा प्यार के सागर गॉड फादर को जानो तो मास्टर प्यार के सागर बन सदा शांति प्यार के सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इसीलिए तो गॉड इज लव कहा जाता है। आप भी लाइफ इज स्पिरिचुअल लव बनाओ, क्योंकि आत्मिक लव ऐसा वंडरफुल मैग्नेट है जो बहुत जल्दी दिल को देश को व्यक्तियों को जोड़ देता है और शांति का अनुभव कराता है। ये विश्व की आत्माओं के प्रति विश्व पिता शांति के सागर का 1985 में संदेश था, और इसकी अनुपालना करते हुए हम ब्रह्मावत्सों ने विश्व में शांति के अनेक कदम उठाए। अब प्रश्न उठता है शांति की शक्ति कैसे प्राप्त हो। इसके लिए कई लोग मौन व्रत मंत्र पाठ समाधि आदि क्रियाएं करते हैं, किंतु इनसे अल्पकालिक प्राप्ति होती है। इस शक्ति को धारण करने की सही विधि यह है कि हम सर्वप्रथम तो यह जाने कि मनुष्य का निजी स्वभाव ही शांति है। अतः मनुष्य अपने इस निजी गुण को समझकर आत्माभिमानी सोल कॉन्शियस जिस रूप से हम पिता परमात्मा के पास से इस सृष्टि पर आए थे उस रूप में ही स्थित हों। मनुष्य आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान है। परमात्मा ज्ञान और प्रेम का सागर होने के साथ साथ शांति का भी सागर है, अर्थात शांति का अखुट भंडार है। जिस तरह किसी बैटरी कमजोर हो जाने पर उस बैटरी को जो चार्ज करने से वह बैटरी चार्ज हो जाती है, ठीक उस प्रकार हम मनुष्य आत्माएं अपनी बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा से जोड़कर अर्थात परमात्मा की याद में बैठकर उससे शांति की शक्ति की जितनी चाहे प्राप्ति कर सकते हैं। सामाजिक प्रगति के लिए भी शांति की शक्ति बहुत अनिवार्य है। मानव मात्र की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, उन सब का कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मनोविकार ही है। शांति की शक्ति द्वारा मनुष्यों के निर्विकारी एवं पवित्र बनने में ही ये समस्या का हल हो सकता है और सृष्टि पर राम राज्य की पुनर्स्थापना का स्वप्न साकार हो सकता है। पवित्रता ही स्थायी शांति और सच्चे सुख की जननी है। शांति की शक्ति को धारण करने का मूल मंत्र है, पवित्र बनो और योगी बनो। यद्यपि ये बात जानी मानी हुई है कि इन मनोविकारों का कारण मनुष्य का देह अभिमान है, तथापि मनुष्य सत्यता की ओर यथा आवश्यक ध्यान नहीं देता और इसका मूल कारण निवारण का उपाय भी नहीं करता, जिसके फलस्वरूप ही उसका अशांत और जीवन दुखी हो जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य के मन में यह स्मृति बनी रहे कि यह स्वयं शरीर से भिन्न एक ज्योतिर्मय अनादि और अविनाशी सत्ता है, जो कि मस्तिष्क में विराजमान होकर मस्तिष्क रूपी स्विच बोर्ड के द्वारा शरीर रूपी साधन का संग्रह कर कार्य करता है, तो ये मनोविकारों से निवृत्ति और स्थायी शांति की प्राप्ति कर सकता है। शांति के लिए कुछ हम जीवन के दर्शन बनाए धार्मिक प्रेमी, तो हम अपने अनुयायियों के जीवन में अपने जीवन के द्वारा शांति को ला सकते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा से मानवीय माध्यम से उपरोक्त विवेक सार हम मनुष्य आत्माओं को दिया है, परंतु उसके साथ साथ निम्नलिखित अनमोल रत्न भी प्रदान किए हैं। परमपिता परमात्मा शिव ने कहा है कि संसार एक नाटक मंच है। मनुष्य आत्मा शरीर रूपी वस्त्र लेकर अपना पार्ट अदा करती है और दूसरों को भी पार्ट में देखती है। जैसे किसी नाटक में कोई राजा अथवा रानी बनकर या दास अथवा दासी बनकर किसी महल में अपना पार्ट अदा करता है, परंतु फिर भी वे मंच से दूर अपने घर इस पार्ट से अलग अपने परिचय को भूल नहीं जाते, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि इस मनुष्य सृष्टि मंच पर पार्ट करते हुए शरीर से अलग अपने निज स्वरूप को, निज धाम को, अपने वास्तविक परिचय को भूल न जाए और वे दूसरों के पार्ट को भी साक्षी की न्यायी देखे तथा उससे मनोरंजन का अनुभव करे। शिव बाबा ने हमें समझाया है कि संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। परमात्मा पिता ने हमें शांति के लिए संदेश दिया है कि संसार को सराय मुसाफिर खाना समझ कर चले, यहाँ की वस्तुओं का उपयोग करते हुए अनासक्त रहें, बल्कि उपराम रहकर अथवा ट्रस्टी होकर जीवन को व्यतीत करें। तभी हम आणविक शस्त्रों द्वारा महाविनाश के कगार पर खड़े विश्व में अशांति के वातावरण में शांति को फैला सकते हैं। आध्यात्म के सभी धर्म प्रेमियों के प्रति मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आदेश हो चुका है, कर्तव्यों का जब होगा पालन धर्म भी बना रहेगा पावन। कर्तव्यों का जब होगा पालन धर्म भी बना रहेगा पावन, विश्व धरा पर होगी शांति, कहीं नहीं होगी क्रांति। जब मन में क्रांति नहीं है तो कहां भी क्रांति नहीं है। कर्तव्य लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। सत्यमेव जयते, धर्म की सदा विजय होती है। आप ऐसी महान विभूतियां शांति की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, आइए विश्व शांति के लिए मिलकर हम सभी संप्रदाय, संगठन, पदाधिकारी, धार्मिक प्रेमी विश्व स्तर पर शांति में, विश्व में शांति स्थापन करने का संकल्प लेकर जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगी देव ब्रह्मा कुमारी कविता जी। हम सभी जानते हैं कि राम राज्य के अंदर सुख शांति समृद्धि थे और रावण राज्य के अंदर दुख अशांति परेशानी। दो शब्द में कहूंगी, हम सब चाहते हैं कि फिर से राम राज्य की स्थापना हो, तो अशांति और शांति का कारण रावण को ज्ञान का अभिमान था। और राम जी को अभिमान का ज्ञान था, ज्ञान का अभिमान और अभिमान का ज्ञान, उसके कारण राम राज्य में सुख शांति समृद्धि थी। और हम उसी राज्य को लाने के लिए अभी अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हमारे सामने अपने विचार देने के लिए साध्वी सुलभा भारती जी फरुखाबाद से पधारे हैं। उसको मैं निवेदन करती हूँ कि आपके समय के अनुसार हमारे सामने अपना उद्बोधन सार रूप में रखेंगे साध्वी जी सुलभा भारती जी। हम किसी का भी डिटेल आईडी नहीं बता रहे हैं। शांति के लिए मैं समझती हूँ कि हम सभी का एक आईडी अविनाशी अगर स्मृति में रहे तो भी वो शांति का हमारा योगदान रहेगा। वो है कि हम सभी चैतन्य बिंदु स्वरूप आत्मा है, शरीर को चलाने वाली, और एक पिता परमात्मा ने हम संतान है। शांति देश मूल वतन परम धाम से हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। शांति हमारा स्वधर्म है, शांति सागर हमारा पिता है। अगर वो ही आईडी हम अपना सदा स्मृति में रखेंगे तो वो भी हमारा विश्व शांति के लिए योगदान रहेगा। हमारे सामने सुलभा भारती जी अपना उद्बोधन रखते।
हरि ओम, नमस्ते सते ते जगत कारणाये, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रियाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानि, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलो सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, गीता माता की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए शिव बाबा की। हम सभी लोग यहाँ पर इस ज्ञान सरोवर में उपस्थित हुए सभागार में, सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित राजयोगिनी बहन कविता दीदी, परम आदरणीय हमारे पास में बैठी राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी जी, और सभी का नाम लेने के बजाय जितनी भी मंच पर उपस्थित थे संत, हमारी महामंडलेश्वर बहन रेखा जी और भाई लोग, सभी महापुरुषों को, और साथ साथ में हमारे सामने बैठे हुए जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए महामंडलेश्वर मंडलेश्वर संत महंत पुजारी, आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और तपस्वी हैं जो इस सभागार में इस समय बैठे हुए जितनी भी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं या उनके आवाहन से आई हुई और भी सामान्यतया सभी पवित्र आत्माएं हैं जो इस समय यहाँ पर विराजमान हैं। इसलिए आप सभी लोगों को हम हृदय से आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सबका हृदय से हम अभिनंदन करते हैं, आपको बारंबार वंदन करते हैं। आप सब लोगों के दर्शन करने का जो सुयोग प्राप्त हुआ, आपके जो विचारों को श्रवण करने का सुयोग प्राप्त हुआ, इसको भी हम सभी लोगों को अपने पूर्व जन्म का कोई सुकृत समझना चाहिए, क्योंकि हमारे सदग्रंथों में हमेशा ये बताया गया है कि दुर्लभम मानुषो देहो। यद्यपि मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन ऐसा दुर्लभ जन्म पाने के बाद भी शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम त्रियमेव तद्देवा अनुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संश्रया। मनुष्य का जन्म हो जाने के बाद ये मत समझ लो कि हम अपने सभी कर्तव्यों की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं या हम किसी महानता के शिखर पर पहुंच गए। मनुष्य जन्म हुआ तो इसका मतलब यह है कि हम पशुता से जगे, पर उसके बाद में ये दुर्लभ शरीर पाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा, इट इज बेटर टू बी बोर्न इन ए टेम्पल बट नॉट टू डाई इन इट। ये तो बहुत अच्छा है कि मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में रहने के लिए आपका जन्म हुआ या सुयोग बना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ और मर जाओ। ये मर जाने के लिए नहीं, इसका अभिप्राय आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे यहां ये कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। का इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद ये दुर्लभ है तो इसके द्वारा हमें कोई दुर्लभ कार्य का संपन्न करना चाहिए। इसमें खाओ पियो मौज उड़ाओ और मर जाओ, इसके लिए शरीर नहीं मिला है। यही विवेकानंद जी के कहने का सार है कि इसका मतलब है कि हम ऐसी साधना करें इस जीवन में जिससे कि हम अमरता की प्राप्ति कर लें। और ऐसा ये मानव शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, हमें सुलभता से मिल गया है। मेरा नाम भी गुरुदेव भगवान ने सुलभा रखा है, यहां पर किसी ने ला आधा बनाया इसलिए मुझे कहने पर। तो ये सुलभम सुदुर्लभम, यद्यपि ये दुर्लभ होते हुए भी हमें सुलभ हो गया। तो इसके बाद में आज का जो विषय भी हम देख रहे हैं क्या है कि हमें विश्व शांति में अपना योगदान देना है। बताइए ये कोई छोटा काम है? ये इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? कोई पशु पक्षी तो इस काम को नहीं कर सकते हैं। इस काम को वो दुर्लभ मानव ही कर सकता है जो इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। और इसको जब भगवान ने भेजा तो कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश दिन हेतु सनेही। कभी करुणा करके भगवान ये मानव शरीर देते हैं। और आज अभी हम जो बाबा के चरित्र के बारे में इससे पहले बहन जी सुना रही थी, उसको सुनते सुनते मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वास्तव में ये कितना बड़ा काम था और कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश में एक ऐसे महामानव के हृदय में वो हो ब्रह्म साक्षात्कार, जिसकी हम सिर्फ अध्ययन करते हैं, संतों से सुनते रहे हैं, लेकिन जिसका साकार स्वरूप यहाँ देखने को। और वो कितनी भाग्यशाली बहनें रही जिन्होंने उस समय के टाइम में और बाबा जी के सानिध्य प्राप्त किया और उनका दर्शन करने मात्र से ही उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य हम सभी लोगों का ये है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी विभूतियों के आ जाने के बावजूद भी हम उनसे कितने दूर रहे, हमें उसका कितनी देर में पता लग पाया। और ये आप लोगों के लिए हम नहीं कहते हैं, हम अपने लिए ही कहते हैं। हम 1974 में मैंने वैसे एक गुरु दीक्षा ली है, जिनसे गुरु दीक्षा ली वो बहुत बड़े संत थे, नैमिषारण्य के स्वामी नारदानंद सरस्वती जी। उस टाइम पर हमारी जानकारी में इतना ही आया कि उस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी महान विभूति सिद्ध महापुरुष के रूप में उनको जाना जाता था। जो कोई भी गुरु दीक्षा लेता था वो उन्हीं से लेता था। मेरा भी सुयोग बना और मैंने उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के समय भी मेरे मन में एक आतुरता रहती थी और वो आतुरता भी एक बालिका मेरे से कह रही थी कल, कहती थी मुझे ऐसा लगता कि अभी तक मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, ये बात जिस समय तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाए है, तो उस समय ही समझ लो उस आगे का रास्ता तुम्हारा प्रशस्त हो गया। तो हमारे यहाँ एक कविता गाई जाती थी गुरुदेव भगवान के उसमें प्रार्थना में, सुबह सुबह 4 बजे उठ के ही, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे, सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भरमाया, तुमको चेत अभी नहीं आया, सोते मस्त पड़े मत बारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। तो बोले जगा रहे हैं, लेकिन बोले कब जानोगे कि तुम जगे हो, तो उसमें लास्ट में कहते हैं जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे, जब तुम्हारा मन विषय वासनाओं से उपराम होने लगे, तब समझो कि अब हम जागे। तो जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे, पूर्ण चित्त राम में लागे, जिसको पाकर संत सुखारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। तो इस प्रकार से है क्या कि जब हमें संतों ने जगाया तो हम जागे, और इसीलिए कहते हैं क्या है, मनुष्य जीवन पाने के बाद भी बोले क्या दुर्लभ है, मनुष्य तुम मोक्ष तुम महापुरुष संशया, मनुष्य जीवन पाने से आप मनुष्य नहीं हो गए, बल्कि मानवता की प्राप्ति करने के लिए आपको साधन करना पड़ेगा, और उसको कैसे जानोगे, तो इसलिए महापुरुषों के संसर्ग में जाओ। जब मुमुक्षता की इच्छा पैदा हो, मुमुक्षता माने जब हमें ये लगे कि हम अपने में पूर्ण नहीं है, हमें अशांति है, हम कहीं पर अटके हुए हैं, तो ऐसा जिसको भी अनुभव होता है बोले वो ही आगे अपनी प्रगति कर सकता है। तो ऐसी प्रगति करने के लिए जब हम कभी संतों के सानिध्य में पहुंचते हैं, तो वो संत किस कोटि के हैं, उनके द्वारा ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ की व्यवस्था को देख करके आप सब लोगों को भी लगा होगा, मुझे सबसे बड़ी जो विशेषता यहाँ पर लगी वो ये है कि अभी तक हमारे संत महात्माओं के बहुत से संप्रदाय हैं सनातन धर्म के, और ऐसा नहीं जैसे कि गायत्री परिवार है, जैसे कि और भी जितने भी हमारे सनातन धर्म के संप्रदाय हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वेदों की शिक्षा दी जाती है, वहां पर शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है, अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर सबसे बड़ी समस्या उस समय आती थी कि महिलाओं के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां जाकर के वो रह सके, और जाती भी थी तो क्या होता था कि वहां पर संतों के पास में अगर बैठ गई और साध्वी हैं तो ऑटोमेटिक लोग कुछ न कुछ गलत ही सोचते, अच्छा तो कोई सोचता ही नहीं, तो उस शर्म के मारे, उस लाज के मारे, उस लिहाज के मारे कोई महिला नहीं जा सकती थी। तो उस समय हम बता रहे कि मैंने जय गुरुदेव के में भी जाके देखा है, मैंने ब्रह्मा कुमारी के में भी जाके देखा है, और वो मेरे को ज्यादा जो टच में नहीं आ सका, जिससे कि माउंट आबू मुझे पहली बार आने का अब मौका मिला, और पूरे देश में हम घूम चुके हैं। तो विश्व शांति की बात जब हम सोचते हैं तो शांति तो तब हम दे सकेंगे तब हमारे हृदय में शांति होगी, और हम अपने हृदय में शांति के लिए तो सबसे एक मंत्र मुझे याद आ गया, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी जब तक भावना तुम्हारी बनी रहेगी, जब तक इतना ही ज्ञान आपने समझ पाया है, तो ऐसे लोगों की गणना छोटे लोगों में होगी। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्, उदार चरित्र तो वो है, महान पुरुष तो वो है जिसको सारा विश्व ही अपना परिवार दिखाई देता है, और वो अपना विश्व परिवार कब दिखाई देगा, जब हम हमारा हृदय शुद्ध होगा, निर्मल होगा, समस्त विकारों से हम परे होंगे, और वो विकारों से परे होने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हम अपने को ही पहले अपना नो दाई सेल्फ, अपने को पहचाने। तो शंकराचार्य जी ने एक बात कही, कुछ लोग सोचते हैं भक्ति और मुक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है, वो एक श्लोक मुझे उसकी अर्धाली हम आप लोगों के सामने थोड़ा सा कहना चाहते हैं कि विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहा कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति विधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। तो अपने स्वरूप का अनुसंधान क्या है? पंचात्मकम देहम इदम नतेहस्ते, ये पंच तत्वों के शरीर को ही हम अपना स्वरूप जब तक समझते रहेंगे तब तक हम आत्म स्वरूप को कब पहचानेंगे? तो स्वस्वरूप अनुसंधान, जब अपने स्वरूप को पहचानोगे, ये तो रूप है, ये पंच तत्वों से बना हुआ ये जड़ तत्व है, इसमें रहने वाली जो आत्मा है, जो निर्विकार है, जो निराकार है, वही आपका असली स्वरूप है। और उस स्वरूप को जो जानने वाला है वही विश्व शांति की बात कर सकता है, वही विश्व शांति के लिए उपयोगी हो सकता है। और उसके लिए हमारे वेद मंत्रों में ये बात कही गई है, यत्र नान्यम पश्यति नान्यम श्रेणोति नान्यम विजानीति तद अल्पः, जहां पर दूसरा देखा जाता है, दूसरा सुना जाता है, दूसरा जाना जाता है, वो अल्प होता है। और न अल्पे सुखम अस्ति, उस अल्पता में स्वयं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है तो दूसरों को क्या दे सकता है। इसलिए कहते हैं यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, तो भूमैव सुखम, जो सार्वभौम जिसकी वृत्ति बन जाएगी, जो सबको अपनी आत्मा आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सः पंडितः, जो अपनी आत्मा के समान ही सारे विश्व प्राणियों को देखता है वही तो वास्तव में विद्वान है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम जब कभी ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारियों को देख करके, इन बहनों को देख करके मुझे बहुत बड़ी शिक्षा ये मिली कि यहाँ पर सफाई स्वच्छता बाहर से भी है और अंतःकरण से भी है। और वो अनुशासन ऐसा नहीं कि हमको वेदों में शास्त्रों में नहीं पढ़ाया गया, संतों क्या नहीं, अथ योगानुशासनम, सबसे पहले तो हमारे योग का यही सूत्र है कि हम अनुशासन में रहे, लेकिन वो अनुशासन यहाँ पर प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। और इन लोगों के जीवन की जो साधना है, उस तपस्या है, उसको देखने से महाजनो एन गता सपन्था, हम सब लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। और इस शिक्षा के साथ ही साथ हमको भी विश्व कल्याण के लिए अपनी साधना, अपना जो भी जीवन हमारा शेष बचा है, और उसको हम विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए जो इनका संकल्प है, उसमें हम भी अपना सहयोग प्रदान करने के लिए सतत निरंतर हम तैयार हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ऐसा चिंतन करते जाए। और मेरी साधना में सन 74 से आज तक हम वो सब साधना करते हैं जो आप लोग करते हैं, बस यही है कि मेरा सहयोग माउंट आबू आने का नहीं बना, और उसके लिए हम अपने को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरी शारीरिक एज 70 वर्ष की तो हुई है, तो इससे आगे तो मुझे अगर पद्मासन पर बैठ जाए तो मुझे 2 घंटे बैठने कोई दिक्कत नहीं होती, हम नहीं चाहते हैं कुर्सी पे और इस मेज पे बैठे, जब भी कोई मुझे बुलाए तो मेरा आसन लगा दिए करो सामान्य उस पे तो जमीन पे, और मुझे आसन पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मुझे मालूम है कि जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। तो इसके साथ ही साथ अंतिम मेरे बोलने का समय हो चुका है, और मेरा निवेदन इतना ही है कि हम नहीं अपने में समर्थ हैं तो उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि ऐसा अब दे दो ज्ञान प्रभो, कुछ रह न जाए अभिमान प्रभो, बस रहे आपका ध्यान प्रभो, चेतना तुम्ही में लय होवे भगवान आपकी जय होवे, भगवान आपकी जय होवे, आसुरी शक्ति का क्षय होवे। जो आसुरी शक्तियां हैं जिनसे हम सभी परेशान हैं, सारे संसार के लोग परेशान हैं, उन सबको मिटाने के लिए हम समर्थ हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, हमारे संतों का प्रयास है, हमारी साधिका बहनों का प्रयास है, हमारे इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान का प्रयास है। तो हमारा भी संकल्प यही है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जो विश्व शांति में हम अपना योगदान प्रदान कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम शांति।
ओम शांति। हमारे को भी दिलगिरी है कि आपको समय की सीमा में बांधना पड़ता है, परंतु अगर सीमा के अंदर ही रहते हैं तो बहुत कुछ फायदा है। जब सीमा के बाहर जाते हैं तो आप सभी को अनुभव है कि हमारे को किन किन बातों से कितना कितना लॉस जाता है। हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्द के अंदर ही विश्व में शांति की लहर फैलाने के लिए बीज रूप में दिया, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अगर ये 3 शब्दों को धारण कर लो तो विश्व के अंदर हमारे से शांति की प्रकंपन लहरें फैलती रहेगी। तो इन्हीं 3 शब्दों को ही हम सार रूप में धारण करेंगे। आगे हमारे सामने संत शिरोमणि रोहित दास जी महाराज है, खाटू श्याम मंदिर भरतपुर। सभी वक्ताओं को 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए बीज रूप में, सार रूप में अपने विचार रखेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। संत रोहित दास जी महाराज।
ओम शांति। मंच में विद्वान संत महंत गुरुजन दीदी माँ मंडलेश्वर महामंडलेश्वर एवं आप सब परम भक्त हैं, आप सभी को पुनः ओम शांति। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद परमिला दीदी, कविता दीदी का जो ऐसे स्थान पर लाए, तो बार बार धन्यवाद उनको करता हूँ कि ऐसी जगह पे मेरे मिला। जब भरतपुर से आना हो रहा था तो रास्ते में गाड़ी फंस जाती है एक बार, तो प्रमिला दीदी फोन करते हैं कि लेट हो रहा है, महा जी आ जाओ आप। तो 20 मिनट से गाड़ी नहीं छूट रहा है, तो जैसे इनका फोन आया तो उसी समय फोन आया, हमने बोला कि लोकेशन सेंड कर रहा हूँ बट आ नहीं रहा है, जाम लगी है, लेकिन इनका फोन आया और तो जाम खुलती है। फिर यहाँ आता हूँ तो बूंद बरस रहे थे, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ ईश्वर शक्ति बूंद के जरिए बरसा रहे हैं। मतलब जब से आया तब से ऐसे देख रहा है कि ईश्वर शक्ति यहाँ पे अपार कृपा के रूप में बरस रहा है, लेकिन अब हम सब पे पड़ता है कि उस कृपा शक्ति को प्राप्त करें या ना करें। जिस तरह से बारिश की बूंद आती है तो अगर वो बूंद सर्प के मुंह पे गिरता तो एक विष की भांति काम करता, वही बूंद अगर एक सिप में गिरे तो मोती बन जाता है, वही बूंद अगर एक वाष्प मतलब गर्म तवे पे गिरे तो वाष्प बन जाता है। तो शिव बाबा किस न किस रूप में कृपा बरसा रहे हैं, आप इस कृपा को एक्सेप्ट करें या ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन हमें तो बड़ा एहसास हुआ कि यहाँ जब से आए हैं तब से पाक कृपा बरस रहे हैं। और जिस जगह पे आए हैं माउंट आबू, मेरे इतिहास पढ़ने का शौक है तो मैंने देखा है कि हिमालय से भी पुराना है। आप ये कल्पना करें हिमालय कितनी प्राचीन है, उससे भी प्राचीन हमारा अरावली के पर्वत है, और इस अरावली के पर्वत में माउंट आबू है, जिसे पुराणों में कहा गया है कि यहाँ पे शिव बाबा का ही शिव का ही जगह है ये। और जो हमारे महादेव जी हैं उनके जो सवारी नंद बाबा है, उसे यहाँ पे एक नाग था उसने बचाया था, तो उसके नाम से फैली ये पर्वत था माउंट आबू। तो किसी न किसी रूप में शिव बाबा का अपार कृपा है जो हम सब पे बरस रहा है और आए हैं। लेकिन समय की सीमा, एक छोटी सी मैं कथा सुनाता, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ ना मुझे बोलने का शौक है, दीदी गादे से बोले तो मेरी भूल चूक बहुत हो सकती है, वाणी के आगे पीछे हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पहले ही। जैसे प्रवीला दीदी है, कविता दीदी है, ऐसे एक राजकुमारी थी सावित्रीवती, वो राजकुमारी थी, किसी मंदिर में बहुत पूजा पाठ किया करती थी। तो एक चोर था, उसकी निगाह जाता है कि ये लड़की पे तो बहुत हार है, बहुत सोना पहन रखी है, इसे कैसे ऐठा जा सकता है। तो कहावत, एक बच्चे से कुछ लेना है तो आपको बच्चा बनने पड़ेगा, एक बुजुर्ग से लेना है कुछ तो आपको बुजुर्ग की भांति आपको व्यवहार करने पड़ेगा। वो चोर ने एक बाबा का रूप लेता है, भेष बनता है और बोलता है कि बच्ची मुझे ना जल पिलाओ। तो लड़की जब जल लाती है तो बाबा बोलते हैं कि बेटे पहले मुझे गुरु दीक्षा ली हो आपने, तब मैं जल के लूंगा। तो बच्ची मना करते कि मैंने नहीं लिया महाराज। तो बोलते कि बेटा मेरे साथ चलो, तुझे मैं गुरु दीक्षा दूंगा। वो लड़की और बाबा जी जंगल की ओर जाते हैं। वो बाबा बोलते हैं कि बेटा ऐसे गुरु दीक्षा नहीं दूंगा, पहले आप अपनी हार उतारो। वो बच्ची हार उतारती है, सीधी सादी भो ये कहावत है, ज्ञानी तो रावण जैसा राक्षस भी हो सकता है, भगत हमेशा प्रहलाद जैसा होता है। तो जो आनंद भक्ति में होती है, मूर्खता में होता है, उसमें ज्ञान में नहीं होता है। तो बच्ची चुपचाप हार उतारती है और रख देती है। वो बाबा जी उसको बांध देते हैं पेट से, बोलते जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम खोलना नहीं, मैं 7 दिन में आऊंगा फिर खोलूंगा। वो बच्ची बंधी रहती है, वो बाबा सारी जीवर लेके चला जाता है। वो पापा उसके राजकुमार है, राजा है, देखते हमारी बच्ची अभी तक आई नहीं है, तो ढूंढते हैं, देखते हैं कि बेटी तुम क्या कर रखी हो। तो बोलते कि पापा मैं आपको सम्मान करता हूँ लेकिन आप मुझे खोले नहीं, क्योंकि गुरु जी का आदेश है, गुरु जी खोलेंगे। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा गुरु का कर्तव्य होता बंधन मुक्त करना, बंधन युक्त नहीं, पूजा पाठ हमें बंधन मुक्त करता है, युक्त नहीं। पूजा पाठ हम धर्म की ओर जाते हैं, मुक्ति की ओर जाते हैं, बंधन के लिए थोड़ी नहीं जाते हैं। लेकिन वो बच्ची मानती नहीं है कि पापा मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन मुझे आप खोले नहीं। अब शाम हो जाता है, शाम को विष्णु भगवान देखते हैं हमारे मंदिर में तो भोग भाग नहीं लगा ना आरती हुआ, और नाराज जी को बोलते हैं नाराज जा पता करो बच्ची कहाँ है। तो देखते हैं बच्ची बंधी है, नाराज जी को पहचानते हैं विष्णु भगवान, वो लड़की पहचानती है। तो लड़की बोलती है नाराज जी आप यहाँ कैसे आए। तो बच्ची आप कैसे ऐसे, वो व्यक्ति चोर है। नाराज जी बोलते हैं वो तेरा गुरु नहीं, वो चोर है, आप चलो यहाँ से। तो बच्ची बोलती है कि गुरु जी जो आप जिसे चोर कह रहे हो हमारा गुरु है, 2 दिन में आपको दर्शन करा दिया, चोर कैसे हो सकता, हम नहीं जा सकते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं बेटा चलो, बहुत जिद्दी किया नहीं माने। फिर विष्णु भगवान के जाकर बोलते हैं कि विष्णु भगवान आपको खुद चलने पड़ेगा। वो बच्ची नहीं मान रही है। विष्णु भगवान अपनी चतुर्भुजधारी हाथ लेकर आते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा वो चोर है, आप चलो। तो लड़की ही बोलती है कि जो महात्मा जो गुरु मुझे 5 दिन के अंदर विष्णु भगवान का दर्शन करा सकता है वो चोर नहीं हो सकता। तो विष्णु भगवान बोलते हैं उस चोर को, नाराज जी को, जा बेटे उस चोर को पकड़ के ला। तो बोलते चोर कहाँ होगा। तो बोलते चोर कहीं होगा चोरी की तैयारी में। तो ठीक है जी जाते हैं। तो बोलते हैं तुझे विष्णु भगवान बुला रहे हैं। वो चोर आता है, उसे रस्सी खोलता है। तो बहुत एक प्यारा वर्ड बोलती है बच्ची कि एक तरफ गुरु खड़ा है, एक तरफ भगवान खड़े हैं, मैं किसको पांव लगूं। मतलब वो बच्ची बोलती है कि एक तरफ गुरु खड़ा है, एक तरफ भगवान खड़े हैं, मैं किसको पांव लगूं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि बच्ची तू क्या पांव लगेगी, तेरा मैं पांव लगता हूं। तुझे एक चोर गुरु मिला, तुझे एक गुरु में ऐसा अटल विश्वास कर लिया कि 5 दिन के अंदर मुझे बुला लिया। अगर तुझे एक सदगुरु मिलते, एक अच्छा गुरु मिलता तो तुम क्या से क्या पा लेती। कहने का अर्थ है आप किसी भी लाइन में चाहे स्टडी लाइन, एडवोकेट लाइन, बिजनेस लाइन, गुरु बनाना बहुत अनिवार्य है। लेकिन गुरु बनाने से पहले आप गुरु तत्व जरूर देखें। किसी भी व्यक्ति को गुरु बना रहे हैं तो आप उसमें गुरु तत्व है या नहीं है। अगर नहीं है तो बनाना व्यर्थ है। अभी दीदी जी जो साध्वी माता जी बोल रहे थे उनसे बहुत प्रभावित हुआ, उनके भी बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन अब आती है ब्रह्म कुमारी ईश्वरी जी का। इनकी मैं सुनता था भरतपुर में, कभी आश्रम में जाना नहीं हुआ, लेकिन कृपा हुआ कि डायरेक्ट यहाँ पे आया। ये प्रवीला दीदी जी का कविता दीजिए। एक कहावत है जो खुशबू होता ना, जैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा ईश्वर शक्ति लेकिन क्या अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह से भरतपुर अपनी शहर है छोटी सी, उसमें कभी मैं आश्रम पे नहीं जाता लेकिन आए दिन इनकी जो कर्तव्य मेहनत है, जो त्याग है, वो भरतपुर के हर इंसान की लबों पे जुआन पे तारीफ बहती रहती है। ये बिना त्याग के नहीं हो सकता। अगर आप चाहते कि मेरे त्याग हो, मतलब आप चाहते कि मेरे एक कहावत है हर इंसान चाहता है मेरी तारीफ हो, लेकिन तारीफ के लिए आपको त्याग चाहिए। आप त्याग नहीं करें और तारीफ हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटी सी संस्कृत की बात पे चल रहा है। अब एक विश्व विजेता आया था देश, सिकंदर जो मिसडोनिया का था, यूनान था, यमन था, ये सारे देश मिट गए। यहाँ ये देश नहीं रहा, न यहाँ के लोग हैं। लेकिन हम कहते ना कि यहाँ के लोग, ये यूनान मिट गया, यमन मिट गया, मिसडोनिया मिट गया, लेकिन क्या वो देश मिट गया? वो देश है, वहां के लोग भी है, लेकिन वो मिटा क्या? संस्कृति। जिस देश का संस्कृति खुद का नहीं रहता तो विनाश हो जाता, देश मिट जाता। आज पाकिस्तान है ना, वहां के लोग भी हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान है, वहां का संस्कृति मिट चुका है संस्कृति। इसलिए अगर आप देश को चाहते हैं कि जिंदा रहे, सनातन धर्म जिंदा रहे, इसके लिए आपको संस्कृति से हमेशा त्याग, संस्कृति के लिए त्याग चाहिए, कर्तव्य चाहिए। और वो दीदी वहां कर रहे, मैं ज्यादा नहीं जानता, पहली बात बोल रहा था कि प्रवक्ता नहीं हूँ, भूल चुके माफ हो, इनके लिए बहुत अभिनंदन है, बहुत धन्यवाद है जो ऐसे काम करते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाता। संत भी 3 तरह के होते हैं। एक जो संत होता है जो थर्ड ग्रेड, जो निम्न कहते हैं थर्ड ग्रेड, वो एक एकांत में जाकर पाठ पूजा करते हैं और तपस्या करते हैं। उनकी चाहत ही रहती है कि मैं बैकुंठ चला जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं। सिर्फ वो अकेला चाहत रखते हैं। वो थर्ड ग्रेड का संत होते हैं। एक निम्न संत होते हैं, वो चाहत रखते हैं कि मैं भी बैकुंठ जाऊं और हमारे लोग भी जाएं। वो निम्न कोटि के संत होते हैं, लेकिन उच्च कोटि के संत होते हैं, उनकी चाहत रहती है क्यों नहीं मैं बैकुंठ को धरती पे लेकर आ जाऊं, जो यहाँ के जीव जंतु भी महसूस करे कि बैकुंठ कैसा होता है। और ये काम अपनी ब्रह्म कुमारी जीश्वरी विश्वविद्यालय ये कर रहे हैं। जिस तरह से आप जानते होंगे कि अगर भागीरथ जी हैं, वो गंगा माँ को नहीं लाते, तो गंगा माँ के कहां से दर्शन करते, पाप कहां से धुलते, ये भागीरथ जी नहीं लाए। तो ऐसे बहुत से संत हुए जो बैकुंठ से स्वर्ग से धरती पर लाए हम आपके लिए, और ये काम दीदी माँ लोग कर रहे हैं। तो हमारे बोलने क्या जाने, हमारी औकात नहीं है हम बोले, हम पहली बार बोल चुके, पहली माफी चाह चुके हैं, हम बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन दीदी जी का आदेश है, इनके आदेश तो ऐसी है। हमारे सामने बैठे देवेंद्र चामंड से बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हम तो बस यही सोच रहे थे ये व्यक्ति कैसे समय निकालनी है। इनसे बात की तो बोले कि महाराज जी वो दीदी जी है, उनकी आदेश है, लेकिन अब एहसास हुआ कि ये दीदी जी का आदेश नहीं था, ये शिव बाबा का आदेश था, जिनके आदेश पे हम भी आ गए, नहीं तो मेरे लिए एक एक मिनट के नहीं आता। छोटी सी मंदिर है वहाँ पे बाबा की मस्ती बहुत मस्त रहता है, 12 साल में संन्यास ले लिया, लेकिन बड़ा कृपा है। तो शिव बाबा के यहाँ पे आने पे एहसास चला कि शिव बाबा आपका जय हो, आपका परम धर्म की हम आपका बड़ा कृपा करते हैं, जहाँ मुझे बुलाए। हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, भूल चुकी माफी चाहते हैं। कविता दीदी और प्रमिला दीदी के लिए मेरे तरफ से पर्सनल ओम शांति दीदी।
महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर शब्दों ने टाइम को देखते हुए अपना वक्तव्य हमारे सामने रखा। अभी पटेल नगर दिल्ली से कुछ कुमारियां बहुत समय से प्रैक्टिस करके डांस तैयार करके आई हुई है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे सामने अपनी प्रस्तुति रखेंगे, दिल्ली पटेल नगर की कुमारियां। शंकर के रूप में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं।
कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव मुरारी कभी योगी कभी भोगी कभी बाल संसारी कभी आदि देव महादेव मुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है बेअंगी तोरे जग परिहारी जिसका नाम हो सुबह शाम हो जिसका नाम हो सुबह शाम हो सब तेरा हो सब सत सम है सम
का रूप लेकर के उसका संदेश हम सभी के सन्मुख रखा कुमारी ने। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय अतिथि डॉक्टर अखिलेश्वर नाथ खरकटे पीठाधीश्वर श्री संत लहरी बाबा आश्रम संस्थान हमारे सामने आकर के अपना अमूल्य महावाक्य संदेश रखेंगे।
ओम शांति। सनातन संस्कृति का आधार अध्यात्म सम्मेलन एवं राजयोग शिविर यह माउंट आबू में आयोजित किया गया है। मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष वैसे नाम काफी याद नहीं है पर माननीय अतिथि साध्वी सुलभा भारती जी संत शिरोमणि रोहिदास जी महाराज गोविंद जी महाराज डॉक्टर कृष्णदेव गिरिजी कोल्हापुर महामंडलेश्वर साध्वी श्री श्री 108 रेखा बांकाजी महाराज नई दिल्ली और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष में एक राजयोगिनी सोनप्रभा बहन जी सब जो निंजार सोलापुर ब्रह्म कुमारी उषा बहन जी सभी उपस्थित संत महंत पुजारी इनको वंदन। बड़ा आनंद हुआ कि यहाँ ब्रह्म बाबा जी इनके यहाँ स्थल में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और आनंद ही हमारा स्वरूप है मगर विषय ऐसा दिया गया है कि आज की जो परिस्थितियां है जो अशांति का वातावरण है विश्व में उस विश्व में शांति कैसी लाई जाए और एक सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता मगर एक अद्वितीय शक्ति अलौकिक शक्ति इनके द्वारा ये हो सकता है। टिकती रही है धरती मां सती संत के आधार पर, उनके ही पुण्य प्रताप है जो दिख रहा है विश्व भर। होते नहीं दोनों कभी तो होता जग का हाल क्या, जयराम कहे इन्होंने ही हमें नवजीवन प्रदान किया। आज के इस भौतिक युग में सब होड़ लगी हुई है, देशों में विदेशों में पाश्चिमात्य संस्कृति का हम अवलोकन कर रहे हैं, मगर हमारी जो लड़ाई है भारतीय संस्कृति की, अध्यात्म की, अध्यात्म यानी आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वो लड़ाई आज असुर और दैविक, इधर में पाश्चात्य संस्कृति में लोग हमारे यहां आ रहे, हमारा अवलोकन कर रहे, और हम लोग दूसरे संस्कृति का अवलोकन कर रहे हैं, मगर उसमें भी हमारी एक सत्वगुण की लड़ाई, एक सनातन संस्कृति की लड़ाई चालू है। क्योंकि जब कचरा रहता है उसको साफ करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता होती है, और उसको साफ करने के लिए हमें अच्छे विचारों की, आचरण की, व्यवहारों की आवश्यकता होती है, और यह कार्य हमारे ब्रह्मा बाबा द्वारा यहाँ पर किया गया, और इतनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ कार्य सुचारू रूप से चालू है, एक आत्मिक प्रगति हो रही है। मगर आज जितने भी देश है, जापान हो, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, ये विस्तारवादी देश है, ये भौतिकता को बढ़ाना चाहते हैं, मगर हमारा देश यह आध्यात्मवादी देश है। हजारों सालों से हमारे यहां संस्कृति आई, अनेक आक्रमण हमारे यहां पर हुए, मगर हम डगमगाए नहीं। विदेशी आक्रमण हुए, पुरातन काल में लड़ाइयां हुई असुर और दैविक, बाद में या आधुनिक काल में, तो इस समय संतों का आगमन हुआ, और उसके कारण हमारी यह जो भारत भूमि है वो टिकी रही। भारतीय संस्कृति में जो योगदान है वो संत महात्माओं का, ऋषियों का, विद्वानों का, आचार्यों का है, और ये लड़ाई आज भी चालू है। जहां दैविक है वहां असुरी है, तो यह जो प्रकृति है, प्राकृतिक नियम है, जिस प्रकार सतयुग में सत्वगुण ज्यादा था, त्रेता द्वापर युग में रजगुण ज्यादा रहा, और कलयुग में तमगुण रहा। अब इस तमगुण को कल विचार हुआ था इस गुणों के ऊपर में, तो तमगुण बढ़ने से हमारी वृत्तियों का खेल है। हमारी वृत्तियां क्या है, निवृत्ति में नहीं बदली, और ये धीरे धीरे यह जो प्राकृतिक जो क्रिया है ये होते रहती है, मगर आज हमको आवश्यकता है कि एक आध्यात्मिक क्रांति हो, और आध्यात्मिक क्रांति हमारे आज भी देश में संत महंत आज है वो कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्रांति, अध्यात्म जो है यानी जो अध्यात्म भौतिक विज्ञान है उसके परे में अध्यात्म विज्ञान है। बात चल रही थी कि मनुष्य आज इतना क्यों ये चल रहा है, जो असुरी विचार चल रहे हैं, तो हमने एक विचार किया, जब भी माताजी ने एक प्रवचन दिया था, वो प्रवचन में क्या था कि आत्मा तो अविनाशी है, मगर ये ऐसा क्यों हो रहा है, आत्मा तो अविनाशी है, तो ये जो अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, ईर्ष्या होती है, क्रोध होते है, काम वासना निर्माण होती है, इसके पीछे कारण है कि उसका मन और बुद्धि, मन बुद्धि और चित्त, ये हमारा कमजोर हुआ है, उसके कारण यहाँ आपत्तियां आती है, हमारे विचार बुरे होते हैं, और संकल्प करने की, कल्प और विकल्प के परे में संकल्प शक्ति है, वो संकल्प शक्ति हमारी कमजोर हो गई है, इसलिए हमें बार बार सत्संग में, अच्छे विचारों में, योगाभ्यास में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में योग का बहुत बड़ा योगदान है, अष्टांग योग का, यम नियम आसन ध्यान प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि, और इसके द्वारा ही हम एक शांति निर्माण हो सकती है, और यह संस्कृति, और हमारी संस्कृति अहिंसा वाली है, अहिंसा की है, हिंदू संस्कृति अहिंसा वाचक है, मगर हिंदू संस्कृति निरपेक्ष भी है, सनातन संस्कृति निरपेक्ष है, निरपेक्ष क्यों है कि हम कट्टर नहीं है, हमारे में कट्टरवाद नहीं है, इसीलिए हम निरपेक्ष है, तो ये संस्कृति का जो उगम है वो अनादि है, शाश्वत है, विभू है, और इसके कारण हम लोग यहाँ पर टिके हुए, परमानेंटली टिके हुए, चाहे कितनी भी लड़ाइयां हो जाए, कितने भी युद्ध हो जाए, कितना भी अत्याचार हो जाए, मगर हमारा जो बेसिक है वो मजबूत है, तो हमें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता तो है मगर चिंतन करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है, और इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, सभी संत समागम एकत्रित हुआ, विद्वान एकत्रित हुए, तो इसकी ऊर्जा है, इसका आरा एक तैयार हो रहा है भारत देश में, जिधर में असुरी शक्तियां बढ़ रही है, तो इधर में पूजा पाठ सत्संग योग इसकी भी साधना चालू है, तो आज का एक विषय था, एक उदाहरण भी था कि जब लड़ाइयां हुई गौतम बुद्ध के सन ईस्वी सन 700 पूर्व में लड़ाइयां जब चल रही थी, तब शॉर्ट में हो जाएगा समय का, क्योंकि बोलना है इतना तो ठीक है, और कभी और ज्यादा बोल सकते, छोटा सा उदाहरण है कि हमने क्या करना चाहिए अभी अपने जीवन में, कि लड़ाइयां हुई तो बुद्ध ने देखा कि इतनी लड़ाई हो रही, इसमें हजारों लोग मारे जा रहे हैं, अशोक सम्राट अशोक ने देखा हजारों लोग मारे जा रहे हैं, तो बोले हमको शांति की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो इस प्रकार में जितने भी अगर लड़ाइयां हुई ये हुई, पर हमारे जो बेसिक फंडामेंटल है, हमारे दर्शन शास्त्र है, हमारे वेद है, हमारे उपनिषद है, ये हमको इतना अच्छा रास्ता दिखाते हैं कि हम लोग कभी भी नहीं हार सकते, और हमारी विजय पक्की है, और हमारे देश में या विश्व में हम शांति, हम भारतीय संस्कृति के लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।
सार रूप में बताया कि अशांति का कारण है आत्मा की कमजोरी, और अगर शांति की अनुभूति करनी है और शांति का प्रवाह फैलाना है तो हमें आत्मा को सशक्त बनाना होगा, और उसका मार्ग है आध्यात्म और राजयोग, जिससे हम आत्मा को शक्तिशाली शांत स्वरूप बनाकर शांति की स्थापना में अपना योगदान दे सकते हैं। आगे हम सुनेंगे गोविंद जी महाराज, हमारे माननीय अतिथि है, सोलापुर से आप यहाँ पधारे हैं, तो आप अपना उद्बोधन हमारे सामने रखेंगे।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सोमलिंगेश्वर कृतूत्र गति की नमन करता हूं। श्री अमोघ सिद्धेश्वर को नमन करता हूं। श्री 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 श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठ सत्गुरु लिंगेक मदगोंडेश्वर महाराज को नमन करता हूं मैं। आज इधर सनातन संस्कृति का आधार अध्यात्म विषय पर सम्मेलन कर रहा है। इधर मैं आने के बाद आपके शंकर लोबे मेरे को फोन कर रहे हैं। मेरे को हिंदी नहीं समझता, नहीं बात करने की भी आता नहीं, मैं क्या बोलूं उधर स्टेज में। उधर क्या बोले मैं, मेरे को नहीं, थोड़ा थोड़ा समझता है ना, थोड़ा थोड़ा कहता है ना, तो कितना आता है ना, तब बोल के डेयरिंग कर रहे हैं आपको। एक एग्जांपल देता हूं मैं। इधर युवा मंच में विश्व मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी कविता भवन में नमन करता हूं। साध्वी सुलभा भारती को नमन करता हूं मैं। सब साधु संतों को, महात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं मैं। इधर शिव बाबा का ज्ञान सरोवर, मानस सरोवर, इधर पांडव भवन में स्थान हुआ था, मैं देख रहे हैं, अक्षर से देख रहे मैं क्या हुआ इधर। आने के बाद मेरे को एक आश्चर्य हुआ, एक बाबा के कमरा में ध्यान को गया था, उधर एक आश्चर्य हुआ, एक चमकता है ना, ऐसा चमक ले। अब मेरे बाबा को सुने, बाबा ऐसा होया मेरे को, क्या है इधर अद्भुत शक्ति है, इधर आत्मा हो, परम पिता परमात्मा, इधर आत्मा है, परमात्मा है। हम आश्चर्य हुआ, मैं मानस सरोवर में हुआ, ज्ञान सरोवर में आया, इधर आया, इधर सबके घूम गया और सब मेरे को सब शांत ओम शांति में एकदम मैं को एक सामान्य मनुष्य मैं, ओ आपका शांति ओम शांति मेरे ध्यान में आया, ओम शांति का ऐसा है ना, ऐसा ध्यान में रह गए। अब एक एग्जांपल देता है सत्य का, सत्य कैसा, एक कलयुग में सत्य कैसा चलना। एक सत्य देवता, एक धर्मात्मा, एक राजा होता, राजा, एक राजा ने कहा, एक ऐसा माउंट आबू में एक राजा था, राजा ने कहा आज सायंकाल तक कौन वस्तु देता है ना, वो भी सायंकाल तक मैं देता हूं, तुम वस्तु विक्री करके पैसे जा सकता है सायंकाल तक। फिर सब आया, वस्तु दिया, पैसे निकले, और क्या हुआ सायंकाल सात बजे आया एक धर्म राजा, धर्मात्मा, परमात्मा ने, परमात्मा आया, कुटी कुटी पुटी सब दारिद्र के एक बट्टी पेटी में कपड़े गए, क्या हो गया आया अभी है। राजा है ना, सत्य देवता राजा, राजे के पास ये रख दिया पेटी। ये क्या है राजा? राजा बोलो इधर क्या है इसमें? इसमें मेरा एक 90 वर्ष का इधर मेरा दारिद्र पेटी है, पेटी में दारिद्र है, तब दारिद्र है। मैं क्या करूं? एक बार बार में एक वचन दिया, तुम क्या बोला समय को, प्रातः काल को क्या बोला? हो कितना क्या वस्तु है ना तुम्हारे पास, मैं लेता है देता है, मैं लेता है और 1000 रुपए देता है, वस्तु घेता मैं पैसे देता। तेरे पास बहुत राजा होता ना, तेरे पास लक्ष्मी बहुत होता, और क्या हो है ले ले लो, 1000 रुपए ले लो, ये दारिद्र का पेटी मेरे पास रख दो। ये दारिद्र का पेटी उसने राजा में सिंहासन में और रखा, रख दिया और क्या हुआ? हमारे पास राजा के पास लक्ष्मी था, धन संपदा सभी होता, सभी एक बार शाम को सोने के बाद आया था एक लक्ष्मी, आया लक्ष्मी घर के राजा के दरबार के जा रहा था, बाहर को जा रहा था और राजा बुलाया, तू कौन है? मैं लक्ष्मी हूं, किधर जा रही है? मैं जाता है मैं किधर है? तुम्हारे पास ये क्या रहे? दारिद्र पेटी, दारिद्र पेटी है, मैं जाता हूं। हाँ जा रहे। दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी कौन? सत्य देवता आया, सत्य देवता आए चल रहे था, और राजा क्या बोला? तू कौन है? मैं सत्य देवता है, सत्य देवता है, किधर चल रही है? नहीं जाता हूं। क्या जाता हूं? तुमने पास दारिद्र पेटी है, क्या है? मैं राजा हूं, सत्य है, सत्य बोलता है मैं, क्या बोले ना तब सत्य बोलता है मैं, सत्य तो तू कैसा जाता है, कैसा जाता है? सत्य सत्य मेरे पास है ना, सत्य क्या है ना? ते सत्य देवता है, सत्य देवता मैं जा सकता हूं, छोड़ेगा तुम्हारे को, छोड़ेगा, बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो सत्य देवता आयो वापस आया तो लक्ष्मी भी आया इसके पास, लक्ष्मी भी आया, सत्य देवता का सत्य देवता ऐसा है। मेरे को भक्त कन्नड़ा में प्रवचन करता हूं, मैं हिंदी में कभी भी नहीं करेगा, फर्स्ट पहली बार इधर में कर रहे। ओम शांति, ओम शांति। शो बाबा की ओम शांति, ओम शांति।
हमारे सामने उपस्थित सभी माननीय अतिथि बहुत ज्ञान खजानों से भरपूर है, परंतु आज विशेष प्रशंसा के पात्र है कि हमारे समय के लिमिट के अंदर अपना ज्ञान खजाना खोल करके हमारे सामने रख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर कृष्णदेव गिरी जी, कोल्हापुर से पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना वक्तव्य हमारे सामने रखेंगे अपने समय के लिमिट के अंदर सीमा में।
सभी महानुभवों को देख रहा है, इनको और इनके साथ निद्रा देवी प्रसन्न हो गई है ऐसा लग रहा है मुझे। इतने जल्दी अगर निद्रा देवी प्रसन्न हो जाएगी तो हमें और दो दिन निकलना है, तो क्षमा मांगता हूं कि निद्रा देवी के लिए, निद्रा देवी का टाइम ये नहीं है इसलिए मैं बोला है, निद्रा देवी के लिए विशेष टाइम है इसलिए मैं बोला है। सर्व शक्तिमान शिव शंभो महादेव को मेरा ओम नमो नारायणाय। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज अभी इस भगवान के दरबार में, शिव ब्रह्मा के दरबार में उपस्थित सभी साधु संत साध्वी महंत श्रीमंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर तपस्वी योगी योग गुरु योग सदगुरु और उन्हीं के साथ पुण्यात्मा ब्रह्म कुमारी। पुण्यात्मा इसलिए मैं बोला कि जो शिव बाबा है, शिव बाबा के अंश जो है वो है ब्रह्म कुमारी, इसीलिए पुण्यात्मा। जिसके पास पुण्य होता है वही शिव बाबा के अंश होकर ब्रह्म कुमारी में आके अपना योगदान करते हैं, और यही योगदान के साथ पूरे विश्व में विश्व शांति में मनुष्य आत्माओं का कर्तव्य क्या है यह बताना है। तो पहले से ही शुरुआत है, ब्रह्म कुमारी के माध्यम से विश्व शांति के लिए पूरे वर्ल्ड में आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है, और ये आत्मा से परमात्मा का मिलन करने का काम ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हो रहा है, और इसीलिए हम सब लोग इधर इकट्ठा हुए हैं। इसमें सब सनातनी धर्म है, सभी धर्म है। एक सुभाषित संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार हा केशवम प्रति गच्छति। इसका मतलब है कि अभी बारिश तो गिर रहा है, लेकिन ये बारिश गिरने के बाद उसका जो वाटर पानी जो है तो हर एक माध्यम से आखिर समुन्द्र में जा रहा है। यही धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर एक के मार्ग अनेक है, लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही है, एक ही जगह पे जाना है जो है परमात्मा शिव, और ये मार्ग खुला हुआ है ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से। इसीलिए मैं उनका मन से आभार व्यक्त करता हूं। और एक छोटा सा, क्योंकि टाइम तो बहुत है, मुझे बोलना तो बहुत आता है, लेकिन मुझे चिट्ठी अच्छी नहीं लगती, पर्ची अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो शॉर्ट करने में बहुत तकलीफ होती है, जब आप प्रवचन देते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट करना बहुत तकलीफ होता है। तो एक तो बताया है कि आत्मा है, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। योग ये भारत का ही देन है, एक आदमी भारत में ऐसा बनाया परमात्मा ने, वो योग विश्व के सामने रखा और विश्व के सामने रखकर वो योग के माध्यम से विश्व को शांति के दौर पर आगे भगाया, वो आदमी है पीएम नरेंद्र मोदी जी। मैं राजकारण की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई तो आदमी चाहिए कि उनके अंदर ये बात आने के बाद वो जग के सामने रखना चाहिए। उन्होंने ये बात जग के सामने रखकर योग के माध्यम से शांति का मैसेज दिया है, और यह मैसेज ही ओम शांति का ही है। मैंने ये सुना कि पीएम नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए थे, यहां का संदेश भी उन्होंने लिया है, जहां पे राष्ट्रपति जी भी आए थे उन्होंने भी यहां का संदेश लिया है। तो और क्या होना चाहिए कि ब्रह्म कुमारी के माध्यम से विश्व भर शांति का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये तो छोटा काम है, और हमें तो उनके साथ योगदान करना है, और छोटा सा योगदान करना है। और दूसरी एक बात है कि आत्मा और परमात्मा, मन और शरीर, मन के लिए ध्यान और प्राणायाम की जरूरत होती है, और शरीर के लिए आसन और व्यायाम की जरूरत होती है। और हम ये समझते हैं, आसन दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम योग कर रहे हैं। आसन एक पार्ट है, योग का एक पार्ट है, अष्टांग का एक पार्ट है, लेकिन योग क्या है? जो बॉडी के पार्ट नहीं दिखते हैं, जो बॉडी के पार्ट नहीं दिखते हैं, उनकी साधना योग है, और ये है राजयोग। आपने सुना होगा, आप सीखने के लिए आए, राजयोग। राजयोग क्या है? जो बॉडी के अंदर है, जो दिखता नहीं, जो अपना प्राण है, दिखता है नहीं? दिखता है, लेकिन अगर वो नहीं रहता है अपने साथ तो हमारा ये देह कुछ काम का नहीं। लेकिन ये देह रूपी मंदिर के अंदर श्वास रूपी भगवान को अगर रहना है तो ध्यान, प्राणायाम, योगासन और व्यायाम, ये चारों की भी जरूरत है। संगणक का सॉफ्टवेयर है ना, ये है ध्यान और प्राणायाम, और हार्डवेयर जो है ना, ये है योगासन और व्यायाम। मतलब ये चारों को साथ में लेकर ध्यान करना है। अगर आत्मा को अपने शरीर के अंदर रखना है तो शरीर को भी फिट रखना है, शरीर मतलब अपना मंदिर। अगर मंदिर नहीं फिट रहेगा तो आत्मा अपने साथ नहीं रहने वाला है। देखो ये दरबार में है, दरबार और स्वच्छ अगर सुस्थिति नहीं रहेगा तो आप यहां आके आपके मन में गलत विचार आएंगे। तो ये साफ सुंदर होना चाहिए, शरीर भी सुंदर होना चाहिए, मन भी सुंदर होना चाहिए। शरीर और मन की सुंदरता के लिए राजयोग करना चाहिए। यही तो संदेश है ब्रह्मा कुमारीज का, और आगे बहुत बढ़ना चाहता हूं। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर और स्पष्ट शब्दों के अंदर हमारे सामने विश्व शांति के लिए ये विद्यालय के जो दो मुख्य सब्जेक्ट है, ज्ञान और योग, उसको आप सभी के सन्मुख रखा। विषय पर आने में भी टाइम चाहिए, विषय को ओपन करने के लिए भी टाइम चाहिए, फिर भी आप बहुत अच्छा सहयोग सभी दे रहे हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय अतिथि महामंडलेश्वर साध्वी जी, श्री श्री 108 रेखा बांका जी महाराज, नई दिल्ली। आप अपना वक्तव्य समय की सीमा में हमारे सामने रखेंगे, ऐसी आशा। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। आज का ये शुभ अवसर और बहुत ही सुंदर जो विषय मिला है कि विश्व शांति के माध्यम के लिए मनुष्य की जो आत्माएं हैं उनका कर्तव्य क्या है, इस विषय के बारे में बहुत कुछ हमारी कविता दीदी ने बताया है, ब्रह्म कुमारी कविता दीदी ने और बाकी हमारे साथियों ने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अपना वक्तव्य आरंभ करने से पहले मैं सभी महानुभावों को, मंच पर विराजमान विभूतियों को और सामने हमारे संत महंत और सभी साथियों को प्रणाम करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस विषय पर बहुत कुछ आप सुन चुके हैं तो मैं बहुत ही थोड़ा बहुत इसका चर्चा करूंगी, लेकिन एक बात हम ये जानते हैं कि कहीं पर भी हमारे देश में या कहीं भी विश्व शांति के लिए हमें जो प्रयास करने हैं उसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे देखिए कि एक तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। एक है एकाग्रता, समर्पण, और इसके अतिरिक्त और बहुत सारी बातें हैं जिनको कि हमें ध्यान में रख करके कार्य करना होता है। जो भी हमारा उद्देश्य होता है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 100% एकाग्रता की जरूरत है। यदि हम कोई छोटे से छोटा कार्य भी लें या बड़ा कार्य लें तो उसके लिए पूरी तरह से हमें समर्पित होना पड़ता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं विश्व शांति की, कि वे किस तरह से मनुष्य आत्माएं जो हैं वो अपना कर्तव्य निभाएं, तो उसके लिए हमें एक तो जो अभी मैंने बताया इस बात का ध्यान रखना है, हमें एकाग्रता का, समर्पण का, और इसके अलावा हमें एक सद्भावना रखनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम अपना कर्तव्य करना जानते हैं तो ये काम आसान हो जाता है। लेकिन हम अपने अधिकार की बात करते हैं पहले कि हमारा अधिकार ये है, हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, तो अधिकार को थोड़ा पीछे रखकर यदि हम अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ें, अग्रिम स्थान उसको दें, तो कोई संदेह नहीं है इस बात में कि हम अपना जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं स्वास्थ्य की बात भी करूंगी। यदि स्वास्थ्य आपका सही है तभी आप कर्तव्य निभा सकते हैं। कहते हैं कि यदि स्वास्थ्य ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, इसके अलावा अगर हम पंजाबी में भी बोलें तो उसमें यह है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तभी हम ये कर्तव्य निभा पाएंगे। और उस स्वास्थ्य के लिए देखिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अभी जो मैं सुविधा की बात करने जा रही हूँ वो है दिव्य ऊर्जा। दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जो कि पूरे वायुमंडल में, समस्त संसार में उपलब्ध है, लेकिन इसे हमने किसी न किसी तरीके से स्वयं उसको उपलब्ध करा के और बहुत स्वास्थ्य के लिए या बड़े बड़े कार्यों के लिए या अभिलाषाओं के लिए या कोई भी कार्य करना हो, कितना भी कठिन कार्य हो, तो उसको हम इससे कर सकते हैं। और मेरा अपना अनुभव है कि यदि हम इस विधि के द्वारा, जिसको कि रेकी, शायद आपने सुना होगा, रेकी भी एक विधि है जिससे कि दिव्य ऊर्जा को अपने हाथों में लेकर के उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है जो कि सही नहीं है उसका स्वास्थ्य, तो उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण है हमारे पास कि यहाँ से यूएसए में एक 12 वर्ष की लड़की जो कि ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, उसको इस डिवाइन एनर्जी से यहाँ से ऊर्जा भेजकर उसे ठीक कर दिया गया केवल 6 महीने में। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है देखिए उस दिव्य ऊर्जा की। यही दिव्य ऊर्जा जो है आप देखते हो हमारे यहाँ पर भी है, और इसके अलावा हमारे जो शिव बाबा जी हैं उन्होंने इसी दिव्य ऊर्जा से हमारे इस पूरी धरती को, पूरे संसार को शांति देना सिखाया हमें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो एकाग्रता है और इसके अलावा जो प्रेम है बहनों का और जो समर्पण है वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है। तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं पिछले 12 वर्षों से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मानेसर में भी जाती हूँ और मालवीय नगर सेंटर जो कि हमारा दिल्ली का सेंटर है वहाँ भी जाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ भी जैसे आप देखते हैं किसी भी सेंटर में चले जाइए आप ब्रह्म कुमारी के, तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि वास्तव में हमने स्वर्ग में कदम रखा है। इतनी शांति, इतना सद्भावना, इतना आदर, इतना प्रेम हमें मिलता है कि हम उसको बिल्कुल अपने शब्दों में कह नहीं सकते। तो ये सारी बातें हैं हमारी जो कि हम वास्तव में इनके ये जो स्थान यहाँ पर जो वेन्यू रखा गया है बहुत ही सुंदर, ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स माउंट आबू। जी हाँ, ऐसे लगता है कि इस ज्ञान सरोवर में जहाँ स्वर्ग सा सुख है, स्वर्ग सी सब चीज दिखाई देती है और हमारी बहनें, हमारी जो ब्रह्म कुमारीज हैं बहुत ही प्रेम से सब सेवा करती हैं। आपने अनुभव किया होगा कि बहुत ही प्रेम हम सबको यहाँ मिला है। और ये बात भी है कि विश्व शांति के लिए जो हम आगे बढ़ रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि इसका हमने कर्तव्य हमारी आत्माओं ने निभाना है, तो इसके लिए हमें योग की साधना की बहुत ही जरूरत है। और आप ये देखिए कि वैसे जो स्वास्थ्य के लिए जैसे मैंने बताया उत्तम भोजन की जरूरत होती है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, योगा करना चाहिए, बहुत सारे इस तरह के साधन हैं हमारे पास। और योगा में देखिए हमारा जो भारत है पूरे विश्व गुरु बन गया है। अब हमारे भारत से आरंभ होकर के जो योगा है वो सारे विश्व में इसको माना जाता है, भारत को के वास्तव में ये विश्व गुरु बन गया है। भारत मंडपम में अभी पीछे मुझे जाने का मौका मिला था जहाँ पर कि हमारी राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारी जी द्रौपदी मुर्मू जी आई थी और उन्होंने भी इसी विषय पर जो हमारा विषय है कि आत्मीयता कैसे होनी चाहिए या किस तरह से सौहार्द हो और हम एक दूसरे से प्रेम से रहें, आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, इसके बारे में उन्होंने इस योजना को वहाँ प्रारंभ किया था भारत मंडपम में। और ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ब्रह्म कुमारी हमारे पूरे भारत की प्रथम स्त्री है जिसने कि पूरे देश को संदेश दिया और पूरे देश को संभाला है। तो ब्रह्म कुमारी इसके लिए ये बहुत ही हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरह से जो इनका साथ है हमें पूरा संत महंतों को और सभी को, सभी सामान्य जो जनता है उनको मिलजुल करके इनका साथ देना चाहिए। जो इनके सेंटर्स हैं बहुत ही बढ़िया हैं, जगह जगह पर हैं, तो हम सबको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, वहाँ से प्रेम की भावना, सद्भावना और जो शक्ति प्राप्त होती है आपको, आपकी आत्मा को जो एक एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को लेने के लिए हमें इन सेंटर्स में जरूर जाना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा मौका मिला है हमें, मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली में बहुत प्रदूषण है और यहाँ आकर के हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत ही शांति, बहुत ही हमारी बहनों ने इतना हमें सहयोग दिया है, इतना प्रेम दिया है, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अंत में यही कि हम सब मिलकर के इन ब्रह्म कुमारी बहनों का साथ दें, संत महंत और महामंडलेश्वर और आम जनता, ताकि हमारी जो आत्माएं हैं वो शुद्ध हों और हम जो कर्तव्य करना है विश्व शांति के लिए उसको हम मिल करके पूरा कर सकें। ओम शांति।
हमारे महामंडलेश्वर साध्वी जी, रेखा बांका जी, ये जो बताया कि यहाँ का कारोबार स्वर्ग सम चल रहा है, उसके पीछे यहाँ के पूरे परिवार को, यहाँ परिवार है, यहाँ गुरु सिस्टम नहीं है, गद्दी की भी कोई बात नहीं है, एक ही परिवार के हम सभी भाई बहने हैं। और हमारी दादी जी प्रकाशमणि जी, आदरणीय श्रद्धेय, उसने तीन शब्द हमको दिए, निमित्त भाव, नम्रता निर्माण और निर्मल वाणी। निमित्त भाव, निर्माण नम्रता और निर्मल वाणी। और हमारी आदरणीय दादी जानकी जी ने हमको तीन शब्द दिए, सच्चाई, सफाई और सादगी। इन्हीं पाठ को हम अपने जीवन में लेकर के पूरा ब्राह्मण परिवार या ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के वश चल रहे हैं, जिसके कारण कोई भी आने वाला व्यक्ति यहाँ स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। अभी हम कार्य की समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षा राजयोगिनी सोमप्रभा बहन, सब जोन इंचार्ज सोलापुर है, बहुत सीनियर राजयोगी टीचर है, वो हमारे सामने अपना उद्बोधन रखेंगे। ब्रह्मा कुमारी सोमप्रभा बहन।
ओम शांति। हम सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। बोलिए, सभी बोलिए ओम शांति। जगत नियंता सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूपी विश्वेश्वर विश्वरक्षक विश्व शिक्षक विश्व परिपालक, हम सर्व मनुष्यात्माओं के दिव्य चक्षु विदाता, शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रता आदि सर्व गुणों के सागर, सर्वशक्तिमान, जिसको हम ऑलमाइटी अथॉरिटी भी कहते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव कल्याणकारी के प्रिय संतान आत्माओं एवं मंचासीन सर्व मेरे प्यारे प्यारे महंत महानुभाव और इस शांति सरोवर के, ज्ञान सरोवर के इस सभागृह में बहुत समय से आप श्रवण करते हुए जो अभी तक हमें सुनने के लिए भी बैठे हैं, तो ऐसे विशेष आप सर्व महान विभूति संत महात्माएं एवं मेरे प्यारे प्यारे दैवी बहने एवं सम्मुख उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं समझती हूं वास्तव में अध्यक्षीय भाषण माना बोर होता है, कारण आप सभी बहुत समय से बैठे हुए रहते हैं, बहुत समय से सुनते ही आ रहे हैं, उसमें भी विशेष आज के दिन तो मैं समझती हूं आप लोग सभी सुबह 6:30 से लेकर के पूरा शिविर भी अटेंड किए, उसके पश्चात इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडर हमारे अति आदरणीय, हम सबके अति प्रिय पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी के बारे में भी आप सभी बैठ करके सुने, उसके बाद तुरंत अभी ये खुला सत्र भी प्लेनरी सेशन भी शुरू हो गया। तो वैसे तो हम 3 दिन से जो हमारे सनातन संस्कृति का आधार आध्यात्म, इस अम्ब्रेला थीम पर हम भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा सुनते ही आ रहे हैं, बहुत से सुंदर सुंदर विचार हम सुने हैं, समझे हैं, कई बातों को अपने जीवन में धारण भी करते हुए आगे भी उसको अपनाने के लिए प्रतिज्ञा भी मनी मन में करते आ रहे हैं। तो आज के इस प्लेनरी सेशन में जो विषय हम अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा भी सुनते आए हैं कि आज का विषय है विश्व शांति में मनुष्य आत्माओं का योगदान अथवा कर्तव्य अथवा यूं कहे उनकी भूमिका क्या है। तो इसको हम आज 2 भाग में विभाजन करके समझेंगे। एक तो विश्व शांति क्या, क्यों, कैसे, दूसरी बात फिर हम सारे विश्व में शांति लाने के लिए हम मनुष्यात्माओं का क्या विशेष कर्तव्य है। केवल इधर मानव अथवा मनुष्य शब्द नहीं है, और पहले के जो विषय है उसमें केवल शांति का शब्द नहीं है, विश्व शांति का शब्द जोड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से हम मनुष्यात्माओं का कर्तव्य क्या है। तो केवल मनुष्य समझने से, मानव समझने से इस कर्तव्य को हम निभा नहीं सकेंगे। वास्तव में ये कार्य हम सब मनुष्यात्माओं का है। वो कैसे क्या है वो हम उसके बारे में भी आज समझेंगे। उसके लिए मुख्य हम 5-6 बातों के बारे में ध्यान देना अति आवश्यक है। पहली बात है कि आत्मा का सत्य और स्पष्ट परिचय को जानना आवश्यक है। यानी मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हूं। मुझ आत्मा का ओरिजिनल धर्म है शांति। मेरा मूल स्थान भी शांति धाम है। परंतु वर्तमान समय पर हम सभी विश्व शांति लाने के बारे में इधर सुनने और सुनाने एक तो इकट्ठे हुए हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान समय पर सारे विश्व में चारों ओर अशांति, दुख और स्ट्रेस जिसको कहा जाता है, तनाव ही तनाव, समस्या ही समस्या फैले हुए हैं। तो ऐसे समय पर हम सर्व महान आत्माएं जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं, इस धार्मिक प्रभाग के इस सम्मेलन में हम पहुंचे हुए हैं, हम सबका आद्य कर्तव्य है फिर से इस सृष्टि पर शांति लाना। कारण भारत विश्व गुरु था, परंतु उस समय पर केवल भारत नहीं था, भारत वर्ष कहा जाता था, भारत खंड कहा जाता था, यानी सारे विश्व ही भारत था। ऐसे भारत को राम राज्य भी कहा जाता। तो जहां पर सुख शांति संपत्त समृद्धि थी, और जहां कहा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णन है, वहां पर घी दूध की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया उड़ते थे, पुष्प के विमान में सभी चारों ओर परिक्रमा देते थे, और सारे नवरत्न जड़ित महलों में निवास करते थे, शेर और बकरी इकट्ठे एक साथ पानी पीते थे। उस प्रकार का जो वो समय था, उस समय पर शांति थी या नहीं, बोलिए, शांति थी या नहीं, थी या नहीं, जरूर शांति थी। तो ऐसे शांति का स्वर्ग फिर से हमें स्थापन करना, ये हमारा आद्य कर्तव्य है। तो ये कार्य कौन कर सकते हैं? मैं तो समझती हूं, मैं बहुत गर्व से कहती हूं, हम जो धार्मिक लोग हैं, हम जो आध्यात्मिक जीवन बनाने के लिए हम यहां पधारे हैं, तो केवल हम लोग ही ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने पूर्वोक्ताओं के द्वारा भी सुन रहे थे कि हम जो भी यहां पर उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए, हम सचमुच बहुत 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 पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। आप लोग ऐसे महसूस करते हैं? करते हैं? बताइए, हाथ उठा करके प्रतिसाद दीजिए, कौन महसूस करते हैं? तो मैं तो जरूर, जब से ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई, जब से आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से मैं महसूस करते हुए आ रही हूं। तो आप लोग भी आज 3 दिन से यहां पर आए हैं, तो इस प्रकार की अनुभूति जरूर कर ही रहे होंगे। तो फिर से हमें उस प्रकार की शांति, सुख, स संपद समृद्धि का राज्य लाने के लिए मुख्य पांच छह बातों के ऊपर ध्यान देना है। एक तो आत्मा का सत्य परिचय चाहिए, क्योंकि कहा जाता है आत्म चिंतन के द्वारा ही आत्मा का परिवर्तन हो सकता है। यानी हम पहले अपने आप को आत्मनिश्चय करना, शरीर से भिन्न अनुभव करना तो अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये शरीर का अभिमान है तब तक कभी शांति आ नहीं सकती अपने जीवन में। क्योंकि शरीर का अभिमान हमें स्थूल दुनिया में लेकर आता है, तो जब हम अपने आप को आत्मनिश्चय करते हैं तभी हम ईश्वर परमपिता परमात्मा को भी जान करके उसका चिंतन कर सकते हैं, उसके अनुभूति कर सकते हैं। तो ऐसे दूसरी बात, जो परमपिता परमात्मा आत्मा उनके पिता परमधाम निवासी है उनका भी सत्य परिचय जानकर हम उसको याद करना, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है अथवा राजयोग कहा जाता है, सहज योग कर्म योग इत्यादि नाम दिया गया है, तो जिसको हम गीता में मन मनाभव के रूप में भी सुनते आए हैं, तो उसको परमपिता परमात्मा को जानकर परमात्मा के चिंतन में रहना अति आवश्यक है। जब तक स्व परिवर्तन नहीं होता तो हम सारे समाज का परिवर्तन, देश का परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? स्व परिवर्तन के द्वारा ही विश्व का परिवर्तन है। तो ऐसे विश्व परिवर्तन का कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस राज्यों के माध्यम से लगभग 1937 से लेकर के करता आ रहा है। तो और इसके लिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का मुख्य फाउंडेशन है। तीसरी बात हमें अति आवश्यक हमारे जीवन में अपनाने की है, वो है पवित्रता का गुण। कहा जाता है वेयर देर इज प्यूरिटी देर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहां पर पवित्रता है वहां ही सुख शांति की जननी है। माना पवित्रता ही सुख शांति की जननी कहा गया है। तो पवित्रता भी कहां तक? जो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को तो हम धारण कर लेते हैं, जिसको पवित्रता कह देते हैं, परंतु और भी थोड़ा सा गहराई में हम जाएंगे, ब्रह्माचारी यानी परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंद स्वरूप शिव कल्याणकारी, जो पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें सत्य ज्ञान और सहज राजयोग सिखाते आ रहे हैं, उस ब्रह्मा के जो भी द्वारा ज्ञान मिला हुआ है उसको अपने जीवन में श्रीमत के अनुसार आचरण में लाना, ये वास्तव में सच्चा ब्रह्मचर्य है अथवा सच्ची पवित्रता है। और इसके साथ साथ हमें सदैव चौथी बात ये याद रखना है, कभी भी कोई भी कोई के प्रति अशुभ भावना, बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, अर्थात नेगेटिव थॉट्स नहीं हो। किसी को भी हम देखें, जब हम आत्मीय दृष्टि से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव संकल्प शुरू हो जाता है, जिसको शुभ भावना शुभ कामना कहा जाता है। तो हमारे जीवन में सदैव शुभ भावना रख करके चलना सबके प्रति अति आवश्यक है, तभी हम स्वयं आत्मा शांति स्वरूप स्थिति का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे, उसका वाइब्रेशन चारों ओर प्रकाश के किरणों के रूप में हम फैला सकते हैं, तभी हम समाज में और विश्व में शांति प्रदान कर सकते हैं। तो और उसके साथ साथ सदैव हम गीता में बताए हुए महा वचन के अनुसार मान अपमान स्तुति निंदा जय पराजय सुख दुख, तो जो भी बातें हमारे जीवन में आती है इन सब बातों में हमारे संतुलन चाहिए। समान दृष्टि से हम अपने जीवन में इन सब बातों को अपना करके यदि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके आगे बढ़ेंगे तो तभी हम दूसरों को भी वो शांति प्रदान कर सकते हैं। ऐसे कहा गया है कि चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाया। कौन बनाया? ईश्वर परमपिता परमात्मा ने हम सबको। देखिए हम जो भी यहां पर आज बैठे हैं हम उस परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान बैठे हैं, हमको ईश्वर ने चुना है, वो हमें गर्व चाहिए। कितने हम महान भाग्यशाली है तो ऐसे परमात्मा हमें अपना बना करके जो अपने जीवन में शांति सुख आनंद आदि प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा भी आदि कर्तव्य होता है दूसरों को भी ये शांति का वरदान प्रदान करना। और उसके साथ साथ और एक मुख्य विशेष धारणा की बात है कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं 3 दिन से सुनते आ रही हूँ, कईयों ने बताया है कि ये जो ज्ञान सरोवर है ये वास्तव में हंसों का सरोवर है। हम सब हंस बैठे हुए हैं। हंस सदैव क्या करता है? सदैव मोती चुगता है, कंकड़ को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से दूध और पानी आप मिला करके रखेंगे वो केवल वो क्षीर को ही ग्रहण करता है और पानी को निचोड़ देता है। उसी प्रकार से हम सदैव दूसरों का गुण को ही ग्रहण करने का अभ्यास करें, कभी भी किसी के अवगुण देखने के लिए ना जाए, तो इससे ही हम स्वयं अपने में अपने मन में शांति को स्थापित कर सकते हैं। तभी संकल्पों के द्वारा दूसरों को संकल्प श्रेष्ठ देने की सेवा कर सकते हैं, हमारे वृत्ति के द्वारा दूसरों की वृत्ति को परिवर्तन करने की सेवा कर सकते हैं, हमारे श्रेष्ठ स्मृति के द्वारा दूसरों की स्मृति को श्रेष्ठ बनाने की सेवा कर सकते हैं, और हमारे स्वरूप के द्वारा यानी अपने एक्टिविटीज के द्वारा दूसरों के कर्तव्य को कर्म को स्वरूप को परिवर्तन करने की सेवा हम कर सकते हैं, जिसको हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मानसिक सेवा मनसा सेवा कहते हैं, जिससे ही हम अपने आत्मा को यवर हेल्दी बना के रख सकते हैं। केवल शरीर को हेल्दी बनाने के लिए हम बहुत कुछ प्रयत्न करते हैं, बहुत दवाइयां करते हैं, आसन प्राणायाम इत्यादि कई साधनाएं अपनाते हैं, परंतु आत्मा को भी हम स्वस्थ रखना अति आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन में शांति सुख आनंद प्रेम और शक्ति इत्यादि पवित्रता आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आप लोग भी सभी इस बात को आज जरूर इतने दिन से सुनते आ रहे हैं तो आज भी सुन रहे हैं, इसको मान करके जरूर चलेंगे। केवल चलेंगे ही नहीं, समय बहुत कम है, वर्तमान समय है कलयुग का अंतिम चरण, सत्ययुग का आरंभ का समय, फिर से ये रावण राज्य बदलकर राम राज्य की स्थापना होने जा रहा है, उसका आद्य कर्तव्य हम सब के ऊपर आज पड़ा हुआ है। तो मैं समझती हूँ हम जरूर इस कार्य में सहभागी होंगे ही, तो इसलिए कहा गया है जब कमान से तीर निकल जाता है, यानी कमान से निकला हुआ तीर, जबान से निकली हुई वाणी और बहता हुआ ऊपर से बहता हुआ पानी, ये कभी भी वापस नहीं आ सकते, लौट नहीं सकते। उसी प्रकार से जो हमारा समय बीतता जा रहा है, ये समय बहुत अमूल्य है, मूल्यवान है, इसको हम व्यर्थ न गवाते हुए इसका एक एक सेकंड को सफल करते हुए हम जरूर स्वयं आगे बढ़ेंगे और अन्य हमारे साथी सहयोगी है, संबंध संपर्क में आने वाले हैं और अपने परिवार वाले हैं, अपने समाज के जो भी लोग हैं, तो उन सब को भी हम इस सत्य ज्ञान और सहज राजयोग का परिचय देकर उनको भी उनके जीवन में शांति प्रदान करने हेतु हम अपना योगदान देना, अपना कर्तव्य निभाना अति आवश्यक है। तो आप सभी इस बात को जरूर मानते हुए, केवल मानेंगे नहीं, साथ में जरूर लेकर जाएंगे, आप लोग अपने जीवन में इसको जरूर अपनाएंगे, ये केवल आशा ही नहीं, मैं संपूर्ण दृढ़ विश्वास रखते हुए आप सभी जो इतने देर होने के बाद भी शांत चित्त होकर के बैठ के सुने, समझे और अपने जीवन में अपने ने कभी जरूर दृढ़ संकल्प करके जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, अभिनंदन, अभिवादन अर्पण करती हूँ। ओम शांति।
आज के खुले सत्र के यहाँ हम समाप्ति करते हैं। शाम को 5 बजे फिर से आप लोगों का इसी हारमोनी हॉल में स्वागत है। साइलेंस पावर पर आगे का वो कार्यक्रम चलेगा प्रवचन का, बहुत ही मंच पर उपस्थित और सभा में उपस्थित सभी हमारे संतगण और इसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतना समय आप शांति से, धीरज से और प्रसन्नता के साथ बैठे, वो भी एक शांति का आपकी तरफ से योगदान है। अभी 3 मिनट परमात्मा की याद में स्थित होकर के आज की सभा को यहाँ संपन्न करेंगे।